İran Radio Podcast.
दोस्तों जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट विशेष रूप से फतह ने दक्षिणी लेबनान में इसराइल के खिलाफ झड़पों का एक सिलसिला शुरू कर दिया। ज़ायोनी शासन ने 1968 से ही अलग अलग बहानों से दक्षिणी लेबनान में आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर दी थीं, जिसके कारण रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ उसकी झड़पें बढ़ती चली गईं। 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक की शुरुआत में लेबनानी सेना काफ़ी कमज़ोर थी। फिलिस्तीनी संगठन भी छापामार कार्यवाहियां ही कर सकते थे और उनके पास बहुत हल्के हथियार थे। 1982 में फतह आंदोलन के नेताओं और लड़ाकों को लेबनान छोड़कर ट्यूनीजिया जाना पड़ा। हालांकि इसराइल, जो फतह के लड़ाकों से निपटने के बहाने दक्षिणी लेबनान में घुसा था, 1985 तक वहां से नहीं निकला। दोस्तों, मेटास्टेसिस इसराइल या इसराइल का मेटास्टेसिस पॉडकास्ट का ये 5वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। से 1990 तक लेबनान में सिविल वॉर इसराइल की सैन्य घुसपैठ का ही परिणाम थी। इसराइल ने लेबनानी संगठनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था और लेबनानी नागरिक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। 1982 में लेबनान युद्ध फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के नतीजे में छिड़ा था, जिसमें इजरायली सेना ने लेबनान पर बमबारी करते हुए बहुत तेज़ी से बैरूत तक प्रगति कर ली थी। इसराइल का दावा था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए इस इलाके में एक बफर जोन बनाना चाहता है। गूगल मैप पर देखा जा सकता है कि फिलिस्तीनी सीमा पर नाकुरा पॉइंट से बैरूत तक की दूरी करीब 55 किलोमीटर है और इस पॉइंट से तुर्की की सीमा हलब तक की दूरी करीब 93 किलोमीटर है। इसराइल ने बफर जोन बनाने के दावे के साथ ही करीब आधे लेबनान को हड़प लिया था। लेबनानी पार्टी मैरोनाइट फ्लांगेस के नेता बशीर गमायल या जमायल की हत्या, सबरा और शतीला नरसंहार और बैरूत के पास रेजिस्टेंस फ्रंट की पहली इकाइयों का गठन इस युद्ध के परिणामों में से हैं। सबरा और शतीला शरणार्थी कैंपों में 16 सितंबर 1982 से कत्ले आम शुरू हुआ, जो 3 दिन लगातार जारी रहा। इस नरसंहार में इन कैंपों में बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें एक बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की थी। शहीद होने वालों में कुछ लेबनानी नागरिक भी थे। एक अनुमान के मुताबिक सबरा और शतीला की कुल 20,000 की आबादी थी, जिसमें इजरायली नरसंहार में करीब 5,000 लोग शहीद कर दिए गए थे। ज़ायनी शासन के तत्कालीन रक्षा मंत्री एरियल शेरोन और इजरायली सैन्य बलों के चीफ ऑफ स्टाफ रफाइल ईतेन के आदेश के बाद ज़ायनी सेना ने इन दोनों कैंपों को घेर लिया और उनका संबंध बाहरी दुनिया से काट दिया। उसके बाद तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल करके इन दो कैंपों में रहने वाले बेसहारा लोगों का नरसंहार किया गया। इस अपराध में फ्लांजेस पार्टी के सदस्यों ने ज़ायनी शासन का साथ दिया। इन कैंपों में अक्सर बच्चे और महिलाएं थीं, लेकिन हत्यारों ने उन पर भी रहम नहीं किया और मासूमों के खून से होली खेली और शवों को सड़कों पर छोड़ दिया, जिसके बाद ज़ायनी सेना के बुलडोजरों ने कैंपों में घुसकर घरों को और इमारतों को ध्वस्त कर दिया, ताकि नरसंहार के सबूतों को नष्ट कर दिया जाए। गन एंड ऑलिव ब्रांच, द रूट्स ऑफ अनरेस्ट इन द मिडल ईस्ट किताब के लेखक डेविड हर्ट सबरा और शतीला नरसंहार के वक्त बैरूत में रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे। उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है 150 लड़ाकों पर आधारित फ्लांजेस का पहला दस्ता शतीला कैंप में घुसा, जो बंदूकों के अलावा चाकुओं और तलवारों से लैस था। 36 घंटे तक इस कैंप में खून की होली खेली गई। रात में इजरायली सैनिकों की मदद से उन्होंने कत्लेआम जारी रखा। फिलिस्तीनियों के घरों में घुसकर लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। वे कुछ लोगों की हत्या करने से पहले उन्हें भयानक यातनाएं देते थे, उनकी आंखें निकाल लिया करते थे, उनकी खाल और नाखून खींचते थे, पेट फाड़ दिया करते थे, महिलाओं और लड़कियों का गैंग रेप करते थे, बच्चों को दो हिस्सों में काट देते थे और उनका सिर दीवार से टकरा दिया करते थे। अका अस्पताल में घुसकर वहां मौजूद सभी मरीजों की हत्या कर दी गई। कुछ लोगों को गाड़ी से बांधकर सड़कों पर घसीटा गया। कितने ही लोगों की अंगूठियां छीनने के लिए हाथों को ही काट दिया गया। कई दिनों तक शव गलियों और सड़कों पर पड़े रहे और जानवर उन्हें नोचते रहे। यूएनओ के जांच कमीशन ने औपचारिक रूप से अपनी रिपोर्ट में इसराइल के हाथों सबरा और शतीला में फिलिस्तीनियों की नस्ल कुशी का जिक्र किया। शेरोन को परोक्ष रूप से इस नस्ल कुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। वर्षों बाद जब सबरा और शतीला पीड़ितों के परिवारों ने बेल्जियम के एक अदालत में शेरोन के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया, तो उनके खिलाफ गवाही देने वालों में तैयार होने वालों की एक एक करके हत्याएं कर दी गईं या उनका मुंह बंद कर दिया गया, जिनमें फ्लांजेस के कमांडर एली होबिका भी शामिल थे। इस भयानक त्रासदी के 4 दशक बीत जाने के बाद इससे संबंधित कुछ फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें निष्पक्ष होने का दिखावा किया गया है। हालांकि ऐसी फिल्मों का मकसद इस तरह के भयानक अपराध को एक छोटे घाव या व्यक्तिगत गलती के परिणाम के रूप में पेश करना होता है। इन फिल्मों में वॉल्ट्स विद बशीर या द इंसल्ट जैसी फिल्में शामिल हैं। इजरायली एनिमेशन फिल्म वॉर्स विद बशीर में निष्कर्ष निकाला गया कि सबरा और शतीला का नरसंहार एरियल शेरोन के पक्षपातपूर्ण निर्णय का परिणाम था, जो अब जिंदा नहीं है। फिल्म द इंसल्ट में भी ये साबित करने की कोशिश की गई है कि युद्ध बुराई के अलावा और कुछ नहीं है और युद्ध का हर पीड़ित किसी राक्षस से कम नहीं होता। दक्षिणी लेबनान का संघर्ष दरअसल ज़ायनी सेना और फ्लांजेस के खिलाफ रेजिस्टेंस संगठनों का संघर्ष था। लेबनानी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने 2 दशकों तक संघर्ष करके आखिरकार दक्षिणी लेबनान को ज़ायनियों के कब्जे से आज़ाद करवा लिया था। इन संघर्षों में लगभग 4,000 इजरायली सैनिक और फ्लांजेस के आतंकवादी मारे गए थे, जबकि लेबनान के हिजबुल्लाह के 1276 लड़ाके शहीद हुए थे। ये पहली बार था कि इसराइल के अजय होने का मिथक ध्वस्त हो गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़ायनी शासन की हार अरब देशों की संयुक्त सेना या किसी देश की आधिकारिक सेना के हाथों नहीं हुई थी, बल्कि एक रेजिस्टेंस गुट के हाथों से ये अपमान झेलना पड़ा था। इसी के साथ साथ फिलिस्तीन में ज़ायनी शासन के कब्जे के खिलाफ रेजिस्टेंस में नई जान पड़ गई। इस नए संघर्ष को इंतफाजा कहा जाता है। इस पॉडकास्ट के इस हिस्से में हम इन संघर्षों का जायजा लेंगे। पहला इंतफाजा। फिलिस्तीन का पहला इंतफाजा पत्थर इंतफाजा के नाम से मशहूर है। ये एक इजरायली ट्रक ड्राइवर द्वारा कई फिलिस्तीनियों को कुचलने और 4 लोगों को शहीद कर देने की घटना के साथ 8 दिसंबर 1987 को शुरू हुआ। फिलिस्तीनियों का मानना था कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि जानबूझकर फिलिस्तीनियों की हत्या की गई थी। शहीदों के अंतिम संस्कार के दौरान फिलिस्तीनियों ने जबालिया स्थित ज़ायनी सेना की एक चौकी पर पत्थर फेंके। जवाब में इजरायली सैनिकों ने फायरिंग कर दी। فلسطینیوں نے اسرائیلی سینکوں کا مقابلہ کیا، جس کے بعد اسرائیلی سینکوں نے اپنی کمان سے مدد مانگی۔ یہ گھٹنا پہلے انتفاضہ کی چنگاری میں بدل گئی۔ یہ انتفاضہ شہروں اور قصبوں میں پھیل گیا، جس کے نتیجے میں 1300 فلسطینی شہید ہوئے۔ آخر کار 1993 میں پی ایل او اور زائنی شاسن کے بیچ اوسلو سمجھوتے کے ساتھ ہی انتفاضہ کی آگ خاموش ہو گئی۔ فلسطینیوں کے پہلے انتفاضہ کی شروعات اور زائنی شاسن کے خلاف جن آندولن کے کئی کارن تھے۔ اس سے پہلے تک فلسطینیوں کا سنگھرش عام طور پر وامپنتھی اور غیر دھارمک راجنیتک سنگٹھنوں کے نیتتو میں ہوا کرتا تھا۔ وہ سبھی ایک ہی رڑنیتی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کے سنگھرش کا فوکس قبضے والے علاقوں کے باہر اور آس پاس کے کھیتروں پر ہوتا تھا۔ یہ سنگھرش پڑوسی دیشوں کی سرکاروں کے وچاروں سے پربھاوت ہوتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب جارڈن نے بلیک ستمبر منایا، اور ایک سمے میں لبنان نے فلسطینی لڑاکوں کو نشکاست کرنے کی کوشش کی۔ کچھ انیہ عرب دیشوں نے بھی ان کی گتویدھیوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی۔ ایک دوسری سمسیا فلسطینی سنگٹھنوں کے بیچ مت بھید تھے، اور ان سنگٹھنوں کو لوگوں کے پارمپرک رجحانوں اور دھارمک مانیتاؤں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ نئی فلسطینی پیڑھی کے لیے ان سنگٹھنوں کے بیچ ویچارک اور انتہین بحثوں کا وستھاپن اور اسفلتا کے علاوہ کوئی پریڑام نہیں نکلا۔ کچھ سمے بعد سنگھرش کرنے والے سنگٹھنوں نے زائنی شاسن کے ساتھ سمجھوتے کا راستہ اپنا لیا۔ سشستر سنگھرش کا تیاگ کرنا، سنیکت راشٹر کے پرستاووں کو مانتا پردان کرنا اور تتھا کتھت شانتی ٹرین میں سوار ہونے سے فلسطینیوں کے من میں نراشا پیدا ہونے لگی۔ اس کے علاوہ انتفاضہ کے انیہ کارنوں میں سے ایک قبضے والے کھیتروں میں سیٹلرز دوارا فلسطینیوں کو آئے دن اپمانت کرنا، انہیں نشانہ بنانا اور زائنی شاسن دوارا انہیں دوسرے درجے کا ناگرک بنا دینا تھا۔ بڑی سنکھیا میں دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر قبضے والے کھیتروں میں بسایا جانے لگا، اور پورے علاقے کی ڈیموگرافی کو یہودیوں کے پکش میں بدلنے اور فلسطینیوں کو بنیادی مانواادھکاروں اور سویدھاؤں سے ونچت کرنے کے پریاسوں کے کارن فلسطینیوں کو دوہرے اتپیڑن کا سامنا کرنا پڑا۔ انتفاضہ کا ایک دوسرا کارن عرب جگت میں زائنی شاسن کے ساتھ ساٹھ گانٹھ کی شروعات تھی۔ اسرائیل کے جنگ کی شروعات سے ہی اس علاقے کے لوگوں نے اس کا ورودھ کیا تھا۔ عرب دیشوں نے اسرائیل کے وجود کا کھل کر ورودھ کیا۔ انتراشٹریہ منچوں پر عرب دیشوں کے پرتندھی فلسطینی سنگھرش کرتاؤں کا جم کر سمرتھن کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک سمے اسرائیل کے خلاف اس سنگھرش نے عرب نیشنلزم کا روپ لے لیا، اور اس دوران عربوں نے اسرائیل کے خلاف چار یدھ لڑے، حالانکہ انہیں ان یدھوں میں سفلتا نہیں ملی۔ فلسطینیوں کے سنگھرش کے اتہاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی فلسطینی عرب دیشوں کی سہایتا کے پرتی نراش ہوئے تو وہ خود ہی میدان میں اتر پڑے۔ 1960 کے دشک میں اسرائیل کے خلاف عرب دیشوں کو لگاتار ملنے والی پراجیوں کے بعد فلسطینی عربوں سے نراش ہو گئے، اور انہوں نے اپنے سنگٹھنوں کا گٹھن کر کے اپنے ادھیکاروں کی رکشا کے لیے پریاس شروع کر دیے۔ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کے بعد ان سنگٹھنوں کے گٹھن میں تیزی دیکھنے کو آئی۔ فلسطینیوں کا انتفاضہ یا سشستر سنگھرش ایسی استھتی میں شروع ہوا جب عرب نیتا اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ فلسطینیوں کے لیے آگے بڑھنے کا ایک ماتر راستہ ساٹھ گانٹھ اور اسرائیل کے ساتھ صلح ہے۔ عمان سمیلن میں اسرائیل کے خلاف ساٹھ گانٹھ کے چرم کا دور دیکھا جا سکتا ہے۔ عرب شاسکوں کو عرب لیگ کے گٹھن کی مکھیہ پریرنا اور ادیش سے منہ موڑ کر فلسطینی مدے کو ایک دوسرے درجے کے مدے کے روپ میں دیکھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بیٹھک میں فلسطینیوں کا پرتندھتو پوری طرح سے جارڈن کو سونپ دیا گیا۔ عربوں نے امریکیوں اور زائنیوں کے چشمے سے فلسطینی سمسیا کو دیکھنا شروع کر دیا، اور وہ اس کے سمرتھن کے لیے بھی انہی پر نربھر ہو گئے۔ ایک دوسری گھٹنا جس نے فلسطین میں انتفاضہ کی شروعات میں بھومکا ادا کی، وہ ایران میں اسلامی کرانتی کی سفلتا تھی۔ ایران کی اسلامی کرانتی نے انتفاضہ پر دو طرح سے پربھاؤ ڈالا۔ فلسطینیوں کے سامنے سنگھرش کا ماڈل پیش کیا، یعنی یہ سکھایا کہ لوگوں کو یدھ کے میدان میں کیسے لایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کھیتر میں عربوں کے فیصلوں کو پربھاوت کیا और स्पष्ट रूप से संतुलन को मुसलमानों के पक्ष में मोड़ दिया। ईरानी क्रांति से प्रेरित होकर फिलिस्तीनी अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार मैदान में आए और संघर्ष को अरब राजनीतिक समीकरणों से उन्होंने बाहर निकाला। ईरानी इस्लामी क्रांति और उसके नेतृत्व ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका और इजराइल अजेय नहीं हैं और उनके साथ टकराकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है। फिलिस्तीनियों ने यह महसूस किया और इस सोच पर अपने संघर्ष की बुनियाद रखी। जैसा कि हमने उल्लेख किया कि स्टोन इंतफाजा ओस्लो समझौते के बाद समाप्त हो गया, लेकिन सन 2000 में शांति वार्ता की विफलता और मस्जिद अल अक्सा पर सैकड़ों इजरायली सैनिकों के हमले के बाद दूसरा इंतफाजा शुरू हुआ। दूसरा इंतफाजा कि जिसे अल अक्सा इंतफाजा के नाम से जाना जाता है, जल्द ही वेस्ट बैंक और गजा पट्टी के सभी शहरों में फैल गया। इस दौरान एक फिलिस्तीनी लड़ाके मोहम्मद अद्दौरा को ज़ायनी सैनिकों ने बेदर्दी से गोली मारकर शहीद कर दिया। ये घटना फिलिस्तीनी इंतफाजा का प्रतीक बन गई। दूसरे इंतफाजा के दौरान फिलिस्तीनी प्रतिरोधी समूहों ने अपनी सैन्य शाखाएं विकसित करने की कोशिश की और हमास की सैन्य शाखा शहीद इज्जुद्दीन कस्साम बटालियन ने अपने हथियार विकसित किए। वे रॉकेट बनाने में सक्षम हो गए जिससे वे ज़ायनी शहरों और कस्बों को निशाना बना सकते थे। इसलिए पहले फिलिस्तीनी इंतफाजा की तुलना में दूसरे इंतफाजा में फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठनों और ज़ायनी सेना के बीच अधिक टकराव और संघर्ष देखा गया। इस दौरान 4,412 फिलिस्तीनी शहीद और 48,000 घायल हुए। दूसरी ओर 1,069 ज़ायनी मारे गए और 4,500 घायल हुए। दूसरा फिलिस्तीनी इंतफाजा 8 फरवरी 2005 को शर्म शेख शिखर सम्मेलन में फिलिस्तीनी प्राधिकरण और ज़ायनी शासन के बीच संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हो गया। इसके बावजूद गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में ज़ायनी शासन के खिलाफ संघर्ष जारी रहा और ये इंतफाजा अब भी जारी है।